निश्चित रूप में परमात्मा ही है, जो किसी से आपका संपर्क नहीं है, सब जगह रहते हैं किसी में नहीं है, सबको प्यार करते किसी को प्यार नहीं करते। न भूतेषु न, मैंने मैं भूतों में प्राणियों में नहीं हूं और सब में हूं, मतलब क्या, किसी से भी कोई स्नेह का प्रीति का गंध नहीं है। गोपियां कहती हैं नखल गोपिका नंदनो खमार, आप जसोदा के पुत्र न नहीं है निश्चित रूप में खल। ऐसा अर्थ लेना पड़े, नहीं तो जरूर आपका चित्त दलित हो जाता, कभी हमको छोड़ करके
नहीं जाता,
नहीं जाता। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी, आप जरूर जसोदा के हैं, किंतु आपकी ऐसी ये कहां से आ गई, आपको लज्जा नहीं चाहिए जसोदा का पुत्र होते हुए भी आपका हृदय इतना कठोर हो। काली गोपी बोली कोई कार्य नहीं, नफल गोपी का आनंद अखिल देही नाम, आप निश्चित रूप में अंतरात्मा के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले आप जरूर हैं, इसलिए आपको दया इत्यादि कुछ भी नहीं है, हृदय आपका कोमल कठोर है, क्योंकि परमात्मा है ना, साक्षी है, साक्षी क्या करता है, एक आदमी को मर्डर कर दो और वो देखता है,
उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जब शायद सुन रहा है कि इसने हमारी मैया को, इसकी मैया को काट दिया, और ये साक्षी है
वो कति तो द्रवित नहीं हो, रोएगा नहीं, और जो साक्षी है जो इसने मार, तो जो साक्षी को नहीं तो कपे समझ, साक्षी चाहिए ना, वो ये उसका हृदय द्रवित हो गया, इसकी मैया मार मर गई है इसने, और जानता है जिसे यही मारा है ठीक, किंतु बिना साक्षी के कुछ नहीं कर। ऐसे ये हमारे हृदय में साक्षियां, हम रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कष्ट से पीस रहे हैं हम लोग, और वो देख रहा है, क्या करेगा उसमें, यदि हमने कोई बदमाशी की तो क्या करेगा, भरपूर दंड देगा, उसको दया नहीं आएगा, इसको कहते हैं। इसलिए सर्व अंतरात्म दृष्ट, सबके अंदर में निवास करने वाले, किंतु किसी से कोई मतलब नहीं रखने वाले आप साक्षी के स्वरूप ही हैं। आपको तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की देवताओं के लिए, इसलिए आप आए हैं, इसलिए आपको दया और इस सब से क्या संबंध है। इस तरह से जैसे जिसकी भावना है उसका इतना हो जाए, इसलिए नाम, नाम कैसा होना चाहिए, अगतमन जसोदानंदन नंद सूनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावन इंद्र प्रणत करुण कृष्णा वित्यनेक स्वरूपे तई मम ऋषि उच्चैः रघुनाथ दास गोस्वामी जी नाम लिए हैं कृष्ण के ना, राधिका जी के नाम भी कृष्ण के, उसमें इतना सुंदर उन्होंने व्यक्त किया है जो और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता, इतने सुंदर सुंदर उनके नाम 100 उन्होंने, उनका नाम 108, उनका श्रवण कर देते ही कल्याण होगा, किंतु होगा किसका, जो इसमें थोड़ा सा रुचि। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत आराधा कांत नमस्ते, इसमें राधा कांत को हटा करके सब बोलो, राधा कांत को हटा दो एक शब्द को और फिर उसको प्रणाम करो, तो जो वैष्णव जो रसिक वैष्णव है उनको इस नाम में रुचि ही नहीं जाएगी, वो होने से राधा कांत को हटा करके बोलो, और राधा कांत कहो तो उसमें सब कुछ आ गया और कोई कुछ बाकी नहीं रहा, इसलिए नाम में भी वैसा नाम होना चाहिए। समस्त नामों में कहते हैं कृष्ण नाम है समस्त नामों का सार है, वो दूध औटा हुआ सार है, राधे की नाम सुंदर सिंह वो एकदम घना दूध है, और उसमें कर्पूर लगा दिया, एकदम सुंदर सुगंध युक्त मधुर दूध हो गया, औंटने पर उसमें चीनी चीनी देने की जरूरत नहीं होती, उसमें अपने आप मिठास आ जाता है, बड़ा सुगंध। और उसमें कर्पूर दे दिया, इसको कहते हैं कूर। कूर किसको कहते हैं?
कृष्ण लीला में तो
हाँ, कोई चीज बना रहे हैं और बना करके उसमें वो कूर लगा दिया। कूर किस चीज का लगाया?
वो
खीर का, खीर का कूर लगा दिया। ऐसे ही नामों में समनामी श्रेष्ठ हैं, किंतु गौण मुख्य हैं। गौण मुख्य में भी मुख्य नाम है, और उसमें भी सबसे मुख्य मुख्यतम मधुर नाम है, राधा संबंधी। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ये ठीक नाम है, किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ये सखा भी हो सकते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जसोदा जी बड़े प्रेम से कर रहे ब्रजेंद्र नंदन, ये भी ठीक है, किंतु स्पेशल जो नाम है वो गोपियों के द्वारा संबंधित वो नाम सबसे श्रेष्ठ। इन नामों के प्रति यदि किसी की रुचि हो वो सबसे उस नाम के द्वारा वो ब्रज पर मिलेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी ने बृहद भगवतामृत में रसायन में इस सब का वर्णन किया। साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण, भागवत श्रवण में भी बहुत प्रकार है। एक स्कंद सुन रहा है, कोई द्वितीय, कोई तृतीय, सृष्टि खंड इत्यादि सुन रहे हैं। नौ स्कंद तक जितनी भी लीलाएं हैं वो सबका सुन रहे हैं। दसवें स्कंद में बाल्य लीलाएं को, कौगंड लीलाएं सुन रहे हैं, और इसके बाद में द्वारका इत्यादि की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। एकादश स्कंद में उसका सार जो तत्व सिद्धांत है और कैसे इसमें प्रवेश कर सकते हैं इसका वर्णन है, और दसम के कुछ जो गीतियां हैं, भ्रमर गीत, गोपी गीत,
वेणु गीत,
वेणु गीत,
प्रणय गीत, प्रणय गीत,
ये सब जो हैं ये श्रीमद् भागवत का मूल सार, उसका मंथन करके सार जो निकाल लिया। तो भागवत श्रवण माने वो श्रवण जिसका जैसा अधिकार है उसके अनुसार भागवत श्रवण। मथुरावास, मथुरावास को किस लिए यहां पर कहा? इसलिए कहा वैकुंठापति सोदरात्मज वृदाकारावती जातिया जत्र श्री सतनिंद पट्ट महिष वृंदई प्रमुखेलती प्रेम क्षेत्रम अपि असौ ततो श्रेष्ठा मथुरा हरे जन्म तत् जत्र श्री ब्रज एव राजित तरण
तमेव।
जिस मथुरा में ब्रज सारा उसी में निवास करता है, इसलिए द्वारका इत्यादि से भी श्रेष्ठ, वैकुंठपुरियों से भी श्रेष्ठ ये मथुरा। और मथुरा चूंकि मंडल में, पहले मथुरा मंडल ही कहा जाता था, अब इसको ब्रज मंडल कहेंगे, तो मथुरा मंडल में ही ये सब ब्रज की जितने भी स्थान है, राधाकुंड, श्यामकुंड, गोलराज, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, सब इसी के अंतर्गत है। इसीलिए प्रेम की प्राप्ति का मथुरा द्वार है ये पद्म पुराण इत्यादि शास्त्रों में भी इसको ऐसा बतलाया गया। रूप गोस्वामी ने भी कहा है मथुरा देवी जी आ रही है, अरे क्या कर रहे हो अवंती, उनकी जूती तो सामने ले आना, अरे उनकी पिकदानी नहीं आए किसको, सापतुलियों को एक-एक को बुला, अरे उनकी पिकदानी तो लाना था जल्दी से, और जब जा तुम डरो मत, डरने की अब जरूरत नहीं है, मथुरा देवी आ गई, द्वारका जल्दी से आ जाना, उनके लिए अभिनंदन की चीजों को फूल की माला इत्यादि सुसज्जित करके रखो, मथुरापुरी को उन सबसे। उनका तात्पर्य यहां पर ब्रजमंडल से, यहां पर उनकी रश्मि लीलाएं होती है। मथुरा मथुरावास शिव मुक्ति सब खाए, शिव विग्रह का सेवा करने से ही, शिव विग्रह का सेवा माने सब एकाकार हो गया, सब देवता देवियों की सेवा है उससे तात्पर्य नहीं, द्वारकाधीश की सेवाई से भी तात्पर्य नहीं। रघुनाथ दास को स्वामी की किससे जरूरत है? राधा और कृष्ण से। इसलिए महाप्रभु जी ने उनको कृष्ण के रूप में गिरिराज जी को और राधिका के रूप में गंगा माता को उनको प्रदान कर दिया और उसी को अपना समझा। रघुनाथ रूप गोस्वामी गोविंद जी की सेवा, सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की, राधा मदन मोहन की सभा प्रकाश की, और मधु पंडित जी ने
गोपीनाथ जी
का, गोपाल भट्ट जी ने राधा रमन जी की सेवा की, जीव गोस्वामी ने
राधा मधु,
जीव गोस्वामी ने नहीं किया, रूप गोस्वामी ने उनको प्रकाश करके उनको दे दिया। इस तरह से श्री विग्रह सेवा, विग्रह सेवा में भी दो प्रकार का, एक होता है अर्चनात्मक स्थूल अर्चना, और दूसरा होता है भावमयी सेवा भावात्मक। हमारी गोस्वामी की जितनी सेवाएं हैं ये सब भावात्मक है, होने से भी ऐसा भावात्मक, इसलिए इसी सेवा को ही अर्चन करना है, किंतु उसमें भावात्मक। तो इस प्रकार से ये पांच श्रेष्ठ हैं। तो पांच में ही आया ना श्री मथुरावास, उसमें ब्रजवास, हमारे बृहद भगवतामृत में बतलाया गया। नारद जी ने प्रार्थना की, ये आपने जिस लीला को प्रकाश किया और गोपियों की महत्ता जो आपने बतलाई, और गोपियों का हमारे प्रति जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम, यह प्रेम जीवों को कैसे मिले, इसके लिए वो प्रार्थना करके वर मांगते हैं। तो कहते हैं कि हमारी इन लीलाओं का जो कोई थोड़ा सा भी श्रवण करेगा श्रद्धापूर्वक, और जहां हमारी लीला भूमि है उसमें प्रार्थना करेगा, लोट पोट करेगा, प्रार्थना करेगा गिर करके, लोट पोट करके, तो उसको सहज ही वो चीज की जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है, भगवान आयो मस्त ऐसा ही हो। इसलिए ये जो कह रहे हैं, जिसे संभाषा ब्रज भुवन एव प्रतिभा, जन्म जन्मन में ही हमारा यहां पर निवास हो, और इसको छोड़कर के कहीं एक सेकंड के लिए नहीं है, इसीलिए उन लीलाओं का वहां पर स्मरण होता है जो उनके लिए आराध्य है। इसलिए वृंदावन वास, ब्रजवास, नवदीप वास, ये साधारण। ये ब्रह्मांड पुराण में ऐसा कहा गया है, परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः, स्पर्श मात्रतः, स्पर्श मात्र से ही परमानंदमयी सिद्धि को प्रदान करती है मथुरा देवी। तो स्पर्श में नहीं आते, राधा कुंड के स्पर्श से ही, स्नान से ही हो जाएगा। तो लाखों लोग तो करते हैं, स्नान क्यों नहीं होता, स्पर्श होना चाहिए ना, तो स्पर्श होना चाहिए। हम लोगों का तब ऐसे मालूम होता है कि स्पर्श नहीं हो रहा है, इसे राधा कुंड में स्नान करने से भी हमारा स्नान हुआ कि नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं, जिसका हुआ उसका हुआ, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ, तब उसका फल एक जरूर हुआ, निष्फल नहीं होगा स्नान। जैसे स्थूल रूप में भी स्नान करते हैं हम, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा देते हैं, निष्फल नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर। तो जिसका जैसा पात्र है उसके अनुसार उसका, कोई अपनी संसारी कामना वासना करेंगे, पारमार्थिक ये करेंगे, उनको सहजी देंगे, ये गोपी प्रेम सहजी नहीं देंगे, जिसके लिए रघुनाथ दास को स्वामी जी प्रार्थना, इनको क्या जरूरत है। इसलिए कहते हैं यह राधा कुंड में बैठू, राधा जी की मैं दासी ही करी और कुछ मैं नहीं चाहती, इसलिए इसको और कौन देगा, राधा कुंड दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए परमानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्र, अंततः श्रद्धा पूर्वक मथुरा में वास, अपराध न होने पाए। यदि और जगहों में जो अपराध होता है उसका उपाय है उद्धार होने का, किंतु मथुरा में प्रदेप लग जाता है,
वज्र
वो सहज ही नहीं जाए, यहाँ रहकर के वैष्णव से मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे, नाम के वृद्धाचरण करेंगे, भगवान का विरोध करेंगे, शास्त्रों का विरोध कर देंगे, ये ऐसा वज्रलिप्त हो जाएगा जो सहज ही नहीं जाए। बहुत सावधानी के साथ में धाम में वास करना साथ ठीक भी है, और कुछ हालत में अयोग्य व्यक्तियों के लिए यह भारी भी पड़ जाता है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि अनाधिकारी व्यक्ति वृंदावन जावे ना, আর যদি যাবে তাহলে না রাখবে চিন্তা, উনকো দূর হি রাখ করকে ইসকে প্রতি শ্রদ্ধা রাখে। আর জিনকো কুছ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হো গই হ্যায় উনকি সর্বনাশ। স্পর্শ মানে জেসে হাত সে ইসকা স্পর্শ কিয়া, ইসকা স্পর্শ কিয়া, তো ইহাঁ পর স্পর্শ কা তাৎপর্য হ্যায় ভাবো কে সাথ মে স্পর্শ, শরীর সে হি স্পর্শ করনে সে নেই, তবে ও ভি বৃথা নেই জায়েগা, ও ফল তো দেগা কুছ না কুছ জরুর, কিন্তু আপনি বাসনা কে অনুসার। অভি হমারি নাম কর রহে হ্যায় আর কর রহে হ্যায় জেসে ভাই বহুত তঙ্গি আ গই হ্যায় কুছ পয়সা, হরে কুছ অমন হো রহা পয়সা পয়সা আ রহা, বুরা তো নেই হ্যায়। अब क्या करेगा, वो तो आ रही चिंता जरूरत है बहुत, लड़की की शादी है, अभी हमको 1,00,000 रुपया चाहिए और है नहीं, दिमाग चंचल हो रहा है, तो नाम तो छोड़ेगा नहीं, नाम तो करेगा, किंतु होगा क्या, जो वो चिंता होने के वजह से वो काम जरूर होगा। ये अनुभूति के साथ में ये सब अनुभूतियां हैं, इसलिए कहते हैं जो मथुरापुरी परानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्र, तो मथुरा में जो कहते हैं उनकी एक रात्रि निवास है ना,
निवास है ना, हरो भक्ति प्रजाय
भगवान की भक्ति हो जाती है, तो कैसे अभिलाषा करेगा, तब तो ये कहेगा कि करवट बदलने के लिए हम यहाँ आए हैं मथुरा, करवट बदलना माने क्या, माने मरने के लिए आए हैं, ये गति हो जाए तो उनको करवट बदलना यहाँ पर हो जाएगा, माने मर जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, करवट बदलने का मन नहीं, तो मथुरा में रह करके यदि मर गए तो बिना साधन भजन के ही मुक्ति हो जाएगी, किंतु कृष्ण प्रेम बिना साधन के नहीं होगा भाई, मथुरापुरी में रह करके भावना करनी पड़ेगी। और यहाँ पर बोलते हैं कि परमानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्र, अर्थात तो मथुरा के स्पर्श, मथुरा के भाव को स्पर्श करते ही धाम के साथ में स्पर्श करने पर जो साधन कर रहा है वो साधन यदि करता रहे अनुरागमय से तो बहुत जल्दी से हो जाएगी इसका ये काम। जैसे श्रीमद् भागवत के तृतीय या दूसरे श्लोक में धर्मा को अत्र परमो निर्मस्तानां सतां वेद्यं बाष्पम अत्र वस्तु शिवदं तात्र अनुमूलनम
श्रीमद् भागवते
महामुनि कृते किं वा परमेश्वर हृदये अवरुद्धते अत्र पृथ्वी सुश्रुवि तत्क्षणात्, तत्क्षणात् भगवान उसके हृदय में आबद्ध हो जाते हैं। तत्क्षणात् माने क्या, तत्क्षणात् माने तो होता है जो उसी समय तत्क्षणात् सुनने से ही, किंतु उसमें लगा दिया, किंतु सुश्रुभि कृति, कृति माने साधन, कृति और सुश्रुभि माने श्रद्धा पूर्वक उसको श्रवण करने वाले, तत्क्षणात् का तात्पर्य वहां से आरंभ हो गया काम। जैसे गैस लाइन हमने जलाई, एक प्रदीप को जला रहे तो जलाने के साथ ही साथ तो प्रदीप जलेगा, ऐसा ही तो नियम है तत्क्षणात्, किंतु हुआ क्या, जो वो छन 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 कर रहा है, कुछ पानी का अंश था या कुछ तेल में गड़बड़ी
जम गया,
अब वो उसके ऊपर जम गया है, इसलिए जला रहे हैं तो कुछ विलंब हो रहा है किंतु जलेगा, ऐसे ही तत्क्षणात्। हाँ, यदि हमारा 10-20 जन्मों के अंदर में भी भगवान के प्रति भक्ति होती है तो उसको तत्क्षणात् समझो, उसको विलंब मत समझो, बहुत जल्दी हो गई, एक दो जन्म की बात है। हम सुनते हैं कि गोपी भाव के लिए कितना ब्रह्मा कितने चले गए, एक दो ब्रह्मा नहीं कितने ब्रह्मा चले और उनका साथ में उन्होंने कहा कि आज हमारा परम सौभाग्य है कि इतना जल्दी भगवान को हमको मिले। श्रुतियां जनकपुर की महिलाएं जौथ की अजौथ की कितना उन्होंने साधन भजन किया, कभी नहीं हुआ मुक्ति, तो बहुत भगवान का एक नाम कर दिया और बस नाम स्पर्श जीवा के साथ में मुक्ति हो गई, ये समझ लो कि तुम लोगों की मुक्ति हो गई है, ये समझ ही रहो भगवान का कितना नाम तुम लोग कर रहे हो उसे तो हो जाए, किंतु प्रेम को ना बढ़ा जाए, अभी मालूम नहीं हो रहा है हम मुक्त हुए, किंतु जब देखेंगे इसे ये हम जब हमारी मुक्ति हो गई उसके बाद में देखेंगे ये भाव आप नहीं है, और यदि भगवान की विशेष अनुग्रह हुई तो फिर जन्म दे करके उसमें कुछ प्रारब्ध कर्म लगा करके भजन साधन के लिए सुख दुख दे करके भजन के लिए, वो कर्मों का फल नहीं है, इसलिए मंदिर मंदिरों में जाकर के दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन भी सुन रहे हैं, कर रहे हैं। निष्ठा किसी एक वस्तु में कृष्ण में नहीं हुई, और कृष्ण में निष्ठा होने पर भी एक भाव में नहीं हुआ, अभी कोई भाव ही नहीं हुआ पांचों में, तो अभी सिद्धि में अभी निकल। कहते हैं बृहद भागवतामृत का श्लोक देकर के बतला रहे हैं, तत्तु लौकिक सद्बंधु बुद्ध्या प्रेम भयादिजम विघ्नम निरस्य तद्गोप गोपी दास्य इप्स्या अर्जये तद्धि तत्तद् ब्रज क्रीड़ा ध्यान ज्ञान प्रधानया भक्त्या संपद्यते प्रेम प्रेष्ट नाम संकीर्तनोद्वा। हमारे सनातन गोस्वामी ने अपना भगवता में अपना सर्वश्रेष्ठ ये सब, कोई कोई ध्यान को बतला रहे हैं श्रेष्ठ, स्मरण को, हाँ स्मरण तो है किंतु नाम संकीर्तन के अधीन हो करके होगा कलयुग में,
कीर्तन प्रभावे
स्वतंत्र प्रभाव उसका नहीं रहेगा, कीर्तन प्रभावे से काने इसलिए नाम संकीर्तन के माध्यम से ही तौ स्तुति कीर्तन कर रहे हैं और उनके माध्यम से कृष्ण लीला का स्मरण होता चला। भजा निराधम अरविंद नेत्रम स्मरा निराधम मधुर स्मिताभ्याम बदा निराधम करुणा भ्राद्राम ततो मम नास्ति गतिर, हमारी और कोई गति नहीं, तवई वास्मी तवई वास्मी राधे, इस प्रकार की निष्ठा हो गई। इसलिए कहा तत्तु लौकिक सद्बंधुवत, कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधु का भाव, सद्बंधु माने लौकिक, लौकिक नहीं किंतु लौकिक,
लौकिक बहुत बड़ा
लौकिक वत, लौकिक सद्बंधु बुद्ध्या, उनको अपने बंधु समझो, अपने प्राण का बंधु, सखा मित्र पिता या प्रियतम सद्बंधु होने चाहिए। लौकिक भाव, अलौकिक भाव होने से ऐस पर जा जाएगा, इसलिए ब्रज का भाव से सिद्धि नहीं, इसलिए लौकिक बंधु बन, सखा एकदम प्राण बंधु, पुत्र और पिता का संबंध भी तो वैसा ही लौकिक पुत्र बन, किंतु ये मत समझो जो कृष्ण में कभी भी भगवत्ता का अभाव होता है, कभी भी अभाव हो नहीं सकता, इसलिए ऐश्वर्य रहने पर अर्थात ऐश्वर्य के प्रकट रहने पर या न प्रकट रहने पर भी नर्वत लीला के भाव के अनुसार में कृष्ण में सद्बंधु भाव होना चाहिए, किंतु होना बड़ा भारी कठिन है, होने पर भी भक्तों के संग से ये सहज और संभव, यदि किसी का ऐसा स्वभाव सौभाग्य हो गया तो। प्रेम भयादिजम भय इत्यादि दूर रहे कृष्ण से, ये भगवान है ऐसा भावना है, लौकिक सद्बंधु हुआ। गोपियों का भी ऐसा है, गिरिराज गोवर्धन धारण कर रहे हैं, गोपियों का आश्चर्य नहीं हुआ, क्यों नहीं आश्चर्य हुआ, हमको आश्चर्य होता है, बड़े बड़े देवताओं को ब्रह्मा को सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको इसलिए नहीं हुआ, अरे नंद बाबा के गोवर्धन जी पूजा ग्रहण करके ऐसे दयालु हो गए अपने आप उठ करके चले, उनको ये नहीं कहा कि कृष्ण के प्रताप से ये उठ करके उनके पर और कृष्ण के बल से उनके अंगुली कटी जाए, कृष्ण ने नहीं किया, और सखा लोग कह रहे हैं हमारी लटकिया के वजह से ये शिकार हुआ और गोपियां क्या कर रही हैं, हमारी आंखों के इशारे पर ये यदि गिर जाएंगे तो हम जला करके इनको भस्म कर देंगे, इसलिए अब तुम कैसे धारण कर, तुम्हारे बाएं में कौन है, इसलिए राधिका जी ये धारण कर रही है, तुम नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी शक्ति है ठीक है तो तुम्हारी शक्ति क्या है, राधा जी, इसलिए राधा जी गोवर्धन को धारण कर, इसमें तुम्हारा कोई भी महत्व नहीं है,
हरी बोले हमारा राधा शक्ति संचारी, शुभ बोले हमारा राधा,
और इस तरह से लौकिक सब बंधु भाव विघ्नम निरस्य तब गोप गोपी दास्य इप्स्या अर्जय, इप्स्या माने कामना, मैं गोप और गोपियों का दास दासी होना चाहता हूं, होना चाहती हूं, ऐसी भावना लेकर के कृष्ण के प्रति सद्बंधु हो। और जहां जहां पर उन्होंने ऐसी सब लीलाएं की हैं उन स्थलों में जाकर के फिर से प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, उनसे प्रार्थना करना, जैसे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं वैसे ही उनको कृष्ण ही समझे, कम नहीं। वो कौन है? बलदेव प्रभु जी खुद है, इसलिए उसके चरणों में प्रार्थना करने से ये कठिन काम भी सहज ही हो जाएगा। तद्वै तस्य प्रिय कीड़ा वनभूम औषधा रहा, इसलिए कृष्ण की क्रीड़ा स्थलियों में सब समय निवास करे। कहां? निर्जन जो वन जैसा भी दिख पड़ता है वहां पर रहे, जैसे कि रूप गोस्वामी कहां रहते थे? नंदगांव में कदम बटे। उसमें भयानक जंगल, अभी भी वहां पर रात में कोई रह नहीं सकता, बड़ा भयानक था। डकैत लोग वहां पर रहते हैं,
बड़ा बड़ा,
यदि चश्मा खड़ी देखा तो हो गया बस खत्म। सन्निवासन तम याद एवं संपद्यते अचिराद ध्रुव, ध्रुव मैंने निश्चित रूप में, अचिराद मैंने वह भाव की सिद्धि हो जाएगी। इसी तरह से उन्होंने वर्णन किया जो धाम के प्रति निष्ठा और धाम में निवास करके और वैष्णव के अनुगत्य में यदि उस प्रकार का भजन किया जाए तो सहज ही भजन करना चाहिए। साधारण रूप में लोग अशांत चित्त से सिद्धि स्थिर नहीं कर और मनमानी तरीके से भजन करते हैं, और कुछ लोग जैसा गुरु वैष्णव लोग बतलाते हैं वैसा भजन करते हैं। भजन करने के लिए कुछ निश्चित नियम है, उन नियमों को पालन करना चाहिए, चाहे वैदिक भक्ति हो चाहे राधा हो। कल हमने बतलाया था ब्रज में ही हम रहेंगे, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी है, नंदगांव है, बरसाना है, या और ब्रज के स्थान है यहाँ पर कृष्ण की लीला स्थलियां है, विशेष विशेष करके उनकी लीला की जगहें हैं, वहीं रह करके एक मिनट भी हम ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे, जैसे उन्होंने किया था। एक त्रुटि काल निमेश काल भी हम प्रेस से बाहर घूमेंगे, जैसे हरि भजन करेंगे इसका संकल्प है वैसे धाम वास का भी संकल्प है। यदि मैंने सुना जब कृष्ण द्वारका गए और उन्होंने उद्धव जी को भेजा दे जाओ उसको बुला लाओ,
मेरे पास में, मैं उसके लिए बहुत विलंब तड़प रहा हूँ, जाओ उसको लेकर के साथ में आना। और उद्धव भी आए और समझाया भी आए, तो जाना चाहिए कि नहीं? भगवान बुला रहे हैं और उद्धव जी आए हैं बुलाने के लिए, फिर तो जाना ही उचित है। कहिए हाँ, जाना उचित है और सब लोगों को जाना भी चाहिए, किंतु मैं नहीं जाऊँगा। सब लोग जाएं और जाना उचित है, जब उद्धव आए हैं कृष्ण भी बुलाए तो जरूर जाओ, तुम लोगों को जाना चाहिए, किंतु मैं नहीं जा रहा किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर हम नहीं जा सकते हैं, ये कल हमने बतलाया। इसके लिए एक छोटी सी कथा है, यहीं पर कोई गांव है, गांव का नाम याद नहीं, उनका कोई एक महात्मा जी थे, उनका भी उत्सव होता है, वही गांव में रह करके बरसाना और गोवर्धन के रास्ते में कहीं वो गांव है,
सुनेरा कदमखंड के पास,
वो लोग सब जानती हैं। कौन सा गांव? धनवार,
धनवाड़ी,
हाँ धनवाड़ी, वो स्थान है। तो वो राधा कुंड के एक बाबा जी थे, उनसे उनकी बड़ी सख्त भाव था और दोनों भावाविष्ट होकर के भजन करते थे, अष्टकाली लीला का चिंतन भी करते थे। लीला दो तरह से स्मरण होता है, एक तो अपनी चेष्टा से एक करते हैं भजन, अपनी चेष्टा से कुछ लोग करते हैं, और कुछ होता है अपने आप होने लगता है नाम। हम अभी अपनी जीवा से कहते हैं अब हरि नाम करना चाहिए था, और एक अवस्था ऐसी है जो अपने आप, तुम्हारी इच्छा नहीं रहने पर भी अपने आप नाम जीवा पर होने लगता है, दूसरा वाला श्रेष्ठ। ऐसे ही हम भजन करते हैं या अपनी चेष्टा से, और एक होता है अपने आप वो लीला या वो भजन अपने आप हृदय में उदित हो जाता है, उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, किंतु वो होगा अनर्थ निवृत्ति के पश्चात, और किसी भक्त की या भगवान की विशेष कृपा हो तो हो। आसक्ति में भी जरा मुश्किल है, तो वो ये होगा जब विशुद्ध सत्वित होगा तब, आसक्ति में भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आभास होगा। तो ये लोग भजन करते 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 अत्यंत परिपक्व होने जा रहे हैं, हठात उनकी इच्छा हुई रणबाड़ी को, बाबा जी को, उम्र भी उनकी बहुत काफी हो गई थी, वृद्ध जरत हो गए थे, इच्छा हुई जी द्वारका, एक बार नहीं गया, नहीं कभी जाकर के देखा, फिर कहा जी नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, द्वारका में नहीं। किंतु थोड़ी सी इच्छा होते ही यदि भक्तों के हृदय में थोड़ी सी इच्छा हो जाए, नाम करते करते भगवान का भजन करते करते, तो भगवान उसकी इच्छा को जरूर पूरा करा देते हैं। ध्रुव जी ने चाहा मैं पृथ्वी का राजा बन जाऊं, और जब भगवान ने दर्शन किया तो उनकी दर्शन की लालसा से मिट तो गई वो आशा, जो अब नहीं, किंतु भगवान ने पहले की जो आशा थी उसको पूरा करने के लिए कहा कि 36,000 वर्ष तक राज्य हो। अब तो रोने लगे, कहा ये नहीं अब ऐसा, अब तो भोग करके ही आए, 36,000 वर्ष ऐसे ही चला गया। इसलिए भजन करने के समय में यदि कोई थोड़ी सी भी कामना हृदय में उठती है तो प्रभु उस कामना को पूरा करा करके तब फिर आगे बढ़ा दे। इसलिए खबरदार, यदि कोई कामना हो गई उसकी छाप मोहर लग जाएगी मन पर, और प्रभु उसको पूरा कराने में कितना दिन लग जाएगा कोई ठीक नहीं, कितने जन व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए अन्न अभिलाष सबको दूर रखो, कोई आसान मर रहे, ये थोड़ी सी बात लगती है मैं द्वारका में जाऊंगा जरा वक्त, कौन नहीं करता है, सभी लोग इच्छा करते हैं जाने के लिए, इच्छा दूसरों के लिए क्षम्य था, क्योंकि इनके लिए क्षम्य नहीं है, क्यों? अब समझ गए हैं, बुझ गए हैं, उपदेश पाए हैं, एक रास्ता इनको मिला है और काफी आगे चले गए, और वहां जाकर के ऐसी इच्छा करना
ये ब्रज भाव के विपरीत है। द्वारका का ध्यान, रुक्मिणी का ध्यान, उनकी पूजा और इनके अंदर में आ गई और उनकी चित्त वृत्ति पर मोहर पड़ गई, छाप पड़ गई। भगवान ने देखा कि इसने सब गड़बड़ कर दी, इसलिए उन्होंने साथ ही साथ में व्यवस्था की है, जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था पूरी करा करके इसका भोग भी करा दें, नहीं तो इसमें जन्म जन्म अंतर चले जाएंगे। जैसे शंकर जी का हुआ था ना, शंकर जी ने अपने कालभूषुंडी को अभिसंपात दिया था, लाख जन्म तुम नरक में जाएगा, तो उनके गुरु जी रोने के वजह से सात सात जन्म और मरण होते 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 थे, थोड़े देर में ही उनको भुगा दिया, भोगना पड़ेगा कि। तो उन्होंने भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था की, एक ब्राह्मण को उनके पास में भेज दिया, मैं जा रहा हूँ द्वारका, हमारे साथ चलोगे बाबा जी, घुमा लाएंगे। नहीं भाई, मेरी जाने की इच्छा तो थी किंतु अब नहीं जाए, अब नहीं जाए, और हमारे पास में क्या है, जो मैं जाऊँगा काफ़ी रुपया खर्चा है, उन्हें खर्चा टर्चा हम करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, आपको पकड़ करके ले चलेंगे और सब प्रकार से आपकी सेवा करने से, बस आप हमारे साथ में चल चले, फिर अब ये बूढ़ा हो गए हैं, फिर कभी समय मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए चलिए। तो उनके कहने से उन्होंने सोचा कि हमारी इच्छा तो हो गई थी, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई जाने की, अब जाने की इच्छा नहीं, तो वो माने नहीं, जिद करने लगे, वो जिद करने लगे भगवान की इच्छा से, उनको तो भोगाना है, जो आ गया उसको जरूर भोगाएंगे, यदि घाव हो गया है तो उसको चीर फाड़ करके उसका निकालेंगे, इसलिए उनको जिद करने से वो मान गए और द्वारका ले गए उनको घुमा सके। द्वारका जा करके और लौटे, इतने में तो उनको ध्यान इत्यादि स्मरण करने का समय नहीं मिला, किंतु अपने स्थान में लौट आ करके अब स्मरण करने की के लिए बैठे। लीलाओं का जैसे अपने आप स्वाभाविक रूप में स्मरण होता था, स्फूर्ति होती थी, अब लाख चेष्टा कर रहे हैं, एक इंच भी, एक केस भी आगे नहीं बढ़ नहीं आ रहे, सारा दिन रात एक दो चार दस बीस दिन बैठे रहे, किंतु आए ही नहीं, थोड़ा सा ले आया फिर उड़ जाए। जब कुछ दिनों तक नहीं हुआ तो अंत में हार गए, सोचा कि राधा कुंड वाले बाबा जी हमारे मित्र हैं, इनसे मैं जाकर के कुछ कहूँगा और कहने पर वो शायद हमारी कुछ सहायता कर सकते, ऐसा सोच बड़े दुखी होकर के महाराज भोजी ले ली। और जब राधा कुंड में आए तो बड़ी सभा उन लोगों की, संतों की बैठी हुई थी, लोग की हरी कथा चल रही थी, कहा जा रहे वो बाबा जी आ रहा है, तो पहले से समझ गए न जाने कैसे, और उनके तरफ में पीठ मोड़ करके और उन लोगों से बात की, लोग आ रहे हैं जो वो आ रहे हैं किंतु किसी की बात नहीं सुन, उनके तरफ में देखा नहीं, यदि राधा जी हमारे प्रति ही असंतुष्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, इनका तो गया अब हमारा भी नहीं गया, इसी तरह से विचार करना चाहिए। गुरु वैष्णव के संबंध में भी भगवत भक्ति के जो अनुकूल हैं उन्हीं से संबंध रखना चाहिए, भगवत भक्ति से जिनका संबंध नहीं रहा ऐसे लोगों से संबंध नहीं रहा, चाहे वो लाख हमारे प्रिय हों, तजिए कोटि बैरी सम, उनको छोड़ करके भगवान का भजन निराला, विशेष करके राधानुगा भजन और भी बड़ा भारी मुश्किल और कठिन है, वो समझ गए और उनसे बातचीत नहीं किया, सामने आने पर भी बातचीत नहीं किया, उनके तरफ में देखा नहीं, इशारा से समझ गए वो भी तो साधारण थे नहीं, अरे जब राधिका जी ने ही त्याग कर दिया तो इन लोगों की तो बात कर, ये तो उनकी सेविका है, ये तो बातचीत करेंगे, इसलिए इनके प्रति द्वेष भाव नहीं आया, बड़े दुखी होकर के लौट के अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया, छोटी सी जैसे पुरी में उनका गंभीरा है ऐसा ही कोई थी भजन करने की, उसमें जाकर के बड़े विरह से तड़पने लगे और तब से हार आधे कहते हुए अपने शरीर में अपने आप आग लग गई, और जल करके भस्म हो गए। दूसरे दिन गांव वाले आए, बाबा जी की कोठरी क्यों नहीं खुल रही, बहुत चेष्टा की नहीं खोली, तो अंत में तोड़ दिया। तोड़ करके देखा जैसे वहां पर तो थोड़ा सा राख पड़ा है और बाबा जी को नहीं। तब फिर वैष्णवों को पता लगा, तब फिर आए और उनका उत्सव इत्यादि किया। तब से प्रति वर्ष उनका वहां पर उत्सव वैष्णव लोग मनाते। ये तो उनके लिए भगवान ने साथ ही साथ दंड दे करके उनको दूसरे जन्म के लिए ठीक कर दिया, किंतु हम लोगों के लिए बिना जाने कहाँ पड़े हुए हैं, बहुत दूर भक्ति राज्य, ये सब जानते भी नहीं है ये सब चीजें। तो बतलाइए, द्वारका जाना कोई बुरी बात नहीं है, रुक्मिणी जी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करते हैं और सब लोगों की पूजा करते हैं, तो रुक्मिणी जी की पूजा करने में क्या सत्य भावना का क्या है, वो तो बड़ी उच्च भाव की थी, वो तो राधिका जी का ही स्वरूप है वो, ये नहीं। इसलिए कहते हैं जब द्वारका में कृष्ण भी जाएंगे और बुलाएं भी अपने प्रिय व्यक्तियों के द्वारा, सत्यभामा जी को भी भेज दें, रुक्मिणी को भी भेज दें, ये जाओ उसको बुला लाओ, यहां राधा जी का गंध नहीं है, हम नहीं जाएंगे कभी, कृष्ण बुलाने पर भी। फटाफट ये चिंता करने के बाद में उन्होंने विचार किया, विचार किया कि मैंने तो कह दिया जब द्वारका कभी जाएंगे ही नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति हो भी सकती है जहां पर हमको जाना पड़े, तो उसके लिए ये बदला है। गोतो उन्मादई राधा स्फुरत हरिना श्लिष्ट हृदय फूटम दारावत्यामिति यदि श्रोम स्मृत रहे तदाहम तत्रैवाम उद्धत मति पतामि ब्रजपुरा समुद्दीय स्वांताधिपति खगेंद्रादपि जवाब। कहते हैं कि वैसे तो मैं द्वारका पुल कभी नहीं जा सकती, राधा जी जाएंगी तब तो जा सकती हैं, राधा जी कभी जाएंगी, राधा जी नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे, किंतु हाँ एक बात है, राधा जी यदि उन्माद ग्रस्त हो गई, राधा जी को उन्माद हो गया, तो उस समय में तो हृदय में शरीर पर किसी चीज का कंट्रोल नहीं रहता, उन्मादग्रस्त अवस्था में यदि चली गई द्वारका कृष्ण के पास में, और उस समय में यदि श्रवण करूं ये राधा जी को उन्माद हो गया और उन्माद अवस्था में हो गई, तो मैं खगेंद्र, खगेंद्र माने गरुड़, गरुड़ से भी बड़े वेग से द्वारका में अपने स्वामी जी के यहां पर पहुंच जाऊंगी। उद्धम उद्धत उद्धत होकर के, उद्धत माने क्या,
किसको परवाह नहीं करे,
जैसे वो उद्धत हो गई राधा जी उन्माद ग्रस्त होकर के, ऐसे मैं भी उन्माद ग्रस्त होकर के राधा जी की सेवा के लिए बिना बुलाए, किसी की निमंत्रण की जरूरत नहीं है, अक्रूर और किसी को उद्धव इत्यादि को आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहां पर राधा जी का के प्रति ऐसा संबंध। इसको समझने के लिए प्रश्न हो सकता है, जैसा कि भागवत में वर्णन किया गया है और ललित माधव नाटक में वर्णन किया गया है, श्रीमद् भागवत के अनुसार में श्रीमती राधिका जी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के लिए गई, सूर्य ग्रहण के लिए नहीं गई, कृष्ण से मिलने भी नहीं गई, वो गई हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। क्यों, एक पंथ
दो
सूर्य की पूजा करने से कृष्ण मिल जाते हैं, ऐसे ही हमारे आराध्य देव कौन है, सूर्य, आराध्य माने प्रकाश, वही सूर्य की पूजा करने के लिए जा रही है ना वहां सूर्य कुंड में, अब वो सूर्य की पूजा करने के लिए हम जाएंगे कुरुक्षेत्र में, सूर्य का उपराग था ना, इसलिए उस संबंध से बहुत गहरा संबंध है,
भानु सब, भानु सब,
इसलिए वहां पर गई, किस लिए गई, सूर्य की पूजा करने के लिए वहां पर सूर्य का ये ग्रहण लगा हुआ है, उसमें हमारी जरूर मौन कामना पूर्ण हुई। मैं बहुत दुखी वहां गई, वहां पर गई जिस उद्देश्य से कुछ सफल हुआ, कृष्ण मिले। और वहां पर उन्होंने कहा आने हृदय मोर मन वृंदावन, आने हृदय
मन मन मन
मोर मन वृंदावन,
मने मने
बने
एक करी मान
करी मान,
कहा तुम्हार पादोदय कराओ यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी।
उन्होंने कहा मैं आ तो गई, आ गई किस लिए, वृंदावन में आपको ले चलने के लिए आई, और लोगों का मन मन है और मेरा मन वृंदावन, तो आप सबके मन में रहते हैं तो कहाँ रहता हूँ, सबके मन में रहता तो हमारे मन में भी रहिए, हमारा मन ही तो वृंदावन है, इसलिए वृंदावन में यदि आप चरणों को यदि पहुंचे तब तो हमारा सबका कल्याण, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आप सबके मन में उदित होते हैं तो वैसे हमारे निर्मल मन में अर्थात वृंदावन में पधारिए। यहाँ पर उसने कहा मैं तो यहीं पर मिल तो गया, आपने बेस तो नहीं छोड़ा, आपने अपने बाप को तो छोड़ा नहीं, नंद बाबा को तो पिता बनाया नहीं, यशोदा मैया को अपनी मैया कहा नहीं,